ವೃಂದಾವನ ನಿವಾಸಿ ನಂಬಿನ ಸದ್ಗಾಮಾಸಿ ರಾಮೋಕ ಆರಾಧಾ ಸ್ಕಂದ ಮೇ ಸುತೋಜ್ಜಲ ಪುಜಂ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಹೀನಾಪರಾಧ ರಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಕಾಕ್ಷಸಾಮಾದಿ ತರಂಗ ಮಧ್ಯೆ ಕೃಪಾಮಯಿ ತ್ವಾಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪನ್ನ ಹೇ ನಮಸ್ತೆ ಗುರವೇ ಗೌರಚಂದ್ರಾಯ ರಾಧಿಕಾಯೈ ತದಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಾಯ ಸದ್ಭಕ್ತಾಯ ಯಥಾಯ ನೋ ವಿರಹ ಕಾತರಯಾಜಿ ಪುತ್ರೇತಿ ತನ್ಮೇತಯಾ ಸರ್ವೋತಿ ತಂ ಸರ್ವಭೂತೈ ಜನಂ ವೈವಾಸ್ಮಿ ತ್ವೈವಾಸ್ಮಿ
और अप्रकट लीला में कोई भी भेद नहीं है।
ये जी गोस्वामी ने भी कहा है, हमारे सनातन गोस्वामी जी ने भी यही बात बतलाया, चैतन्य चैतामृत ने इसको स्पष्ट रूप से बतलाया कि गुरु इसे वैकुंठ के ऊपर में तीन लोग, कृष्ण लोग तीन लोग, द्वारका मथुरा और गोलोक में भी तीन गोलोक, उसके अभ्यंतर में श्वेत द्वीप, गोकुल, ब्रज अथवा वृंदावन, ब्रज वृंदावन दोनों और गोकुल एक है, और उसी का परिशिष्ट महाप्रभु जी का लीला का क्षेत्र से श्वेत द्वीप उसी में, वहाँ पर जो लीला होती है वही लीला इस अप्रकट धाम में भी वही लीला होती है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। वैकुंठ में, द्वारका में, मथुरा में और गोलोक में भी वो लीला नहीं है जो गोकुल और वृंदावन में, केवल ब्रज में ही उसका प्रकाश है, पर यात्रा होगा और कहीं तो वो ब्रज मैंने अप्राकृत गोलोक। दूसरी बात, जी गोस्वामी का यही यदि अभी भाव होता तो जब उन्होंने गोपालचंद को आरंभ किया तो उन्होंने लिखा पहले ही, मैं जो इसको लिख रहा हूँ उसको गोलोक में जो कृष्ण की लीला हो रही है उसको देख करके लिख रहा हूँ, गोलोक की लीला, और उसमें उन्होंने रास इत्यादि का वर्णन किया है, कृष्ण के जन्म लीला इत्यादि का वर्णन किया है।
तो गोलोक में सभी भाग से रास लीला,
मथुरा में गोविंद जी का मंदिर कोई मत दर्शन करो, तो ये कहाँ हुआ, मथुरा में कहाँ है? अरे मथुरा का अंतर्गत तो वृंदावन है, इसलिए ये बात गलत नहीं। ऐसे ही रासलीला गोलोक में हुई, मैंने उसके हृदय रूपी अभ्यंतर में वृंदावन में ले लिया, श्री मातृमंडल में रासलीला हुई है, उनका जन्म हुआ है, गोचारण किए हुए हैं, यह बात असत्य नहीं। इस तरह व्यापक क्षेत्र में और स्पेशल रूप में जब विचार करेंगे तब गोकुल का वैभव गोलोक उस समय ऐसा है, इसलिए उन्होंने जो कुछ वर्णन किया है गोपाल चंपू में वो सब लीलाएं वहां के वर्णन किया है, यहाँ प्रकट ब्रज का नहीं, इसलिए वहां पर भी जब लीला है तो यहाँ पर भी लीला प्रकटित हुई, इसलिए जब वहां पर भी चिन्मयी सब लीला है तो यहाँ पर भी वही चिन्मयी लीला है, वो माइक नहीं हुआ, कृष्ण की कोई भी लीला माइक नहीं है। जी गोस्वामी ने देखा कि ब्रह्म मोहन में कुछ माइक लीला है, इसलिए कृष्ण की रास लीला इत्यादि में, वृंदावन की लीला में भी कुछ माइक लीला हो सकती है, जिसको माया विजृंभन अथवा माया
प्रत्ययित
भाव जिसको कृष्णा चौवर्ती ठाकुर जी उसको हमारे जीव गोस्वामी को आग्रह करते हुए बतला रहे हैं, जैसे वहाँ पर माई कुछ नहीं। यहाँ तक हम लोग विचार कर लिया था, कल हमने एक और बात बतलाई थी, इस जगत में पहले जन्म लीला से आरंभ होता है, जन्म के बाद में पौवर्ण, पौवर्ण के बाद में किशोर, किंतु नित्य जगत में किशोर रूप ही मूल है, उसी से बाल्य पौवर्ण और जितनी भी युवा और जितनी भी लीलाएं उसी से प्रकाशित होती है, जैसे सबका उद्गम स्थान आदि रस है, आदि रस में मधुर रस है, मधुर रस में सब है, इस तरह से किशोर लीला में ही सब कुछ है, उसी से सब प्रकट, इसलिए वहाँ पर नित्य रूप में कृष्ण का किशोर रूप ही सबसे श्रेष्ठ और नित्य बतलाया गया। वैसे वहाँ का सभी कुछ नित्य है। और प्रकट लीला में नित्य दाम पत्थमय लीला और प्रकट लीला में माई करोड़ा उत्पत्ति भाव, ऐसा करना असंगत है। विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर जी का असंगत संगत नहीं, अर्थात ये शुद्ध विचार नहीं है, क्योंकि सर्वलीला मुकुटमणि राष्ट्रीला आदि अंत मध्य में ही करोड़ा उत्पत्ति का भाव विराजमान है। आदि में बंसी वादन करने के समय में ही गोपियाँ दौड़ करके अपने पति पुत्र सबको छोड़ कर आए। मध्य में भी कृष्ण कह रहे हैं कि तुम लौट जाओ, पतियों की सेवा करो, जैसे वहाँ पर भी। और अंत में पति सुतान्वय भ्रातृवान भगवान अति विलंबते अंत पिता लता इत्यादि। और अंत में जो गोपियों के पतियों ने देखा कि हमारी पतियाँ तो हमारे पास ही हैं, इसलिए कोई द्वेष इत्यादि नहीं, नाश्मियन इत्यादि श्लोक में इसका जाते हैं। इसलिए आदि मध्य और अंत में यही भाव, इसलिए रासलीला को कभी भी माइक मत समझो। रासलीला के राजपंचाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में ही पार्थिय उपपति प्रतिपादक वचनों का प्रमाण है। जैसे ताबार्जमाना पति भी पतियों ने मना करने पर भी पतियों के द्वारा वो नहीं रुकी, वो चली आई। भ्रातर पतयश्च वह 29-20 में भ्रातर पतयश्च वह विचिन्वन्ति, खोज रहे हैं होंगे, जल्दी से जाओ नहीं तो यदि यहाँ आ गए तो बड़ा भारी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए तुम लोग चली जाओ। एवं जत पत्य पत्य सुहृदान अनुवृत्तिरंग 29-32 में जत पत्य
अपत्य
अपत्य सुहृदान अनुवृत्तिरंग। इसी तरह से यहाँ पर भी उसी प्रकार से बतलाया गया, पति अपत्य माने बच्चे और सुहृदम
पिता माता
इत्यादि, अनुवृत्तिरंग माने क्या,
उनकी सेवा
जाकर के तुम वहाँ पर उनकी सेवा करो। यहाँ पर मतलब यहाँ पर भी उसी तरह से तद गुना में गायन तो नात्मा गाराणी संस्मरु, कृष्ण का तुम गान करने लगी, गान करते 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 न आत्मा अपने को भूल गई, गाराणी अपने आगाराणी अपने गृह को, गृह माने क्या, पति पुत्र भाई सुहित जितने हैं सबको, कुछ भी स्मरण नहीं कर सब एकदम कर नहीं। यहाँ पर भी कोई आगारानी माने पति इत्यादि है। पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवान अति विलंघते अंत अच्युता आगता, ये राजपंचाध्याय के 31 अध्याय में ये बदला है। क्या बतला गया, पति सुतान सुता सुत अन्वय भ्रातृ बांधवान अति विलंग माने उनके मना करने पर भी उनकी बातों का लंघन करके और
चलिए
कृष्ण के पास में चली आई। यही गोपियों का वैशिष्ट है। शास्त्री कह रही है कि तू मत जाओ, कहता है जबकि तेरी लड़कियां क्यों जा रही हैं, लड़कियों को पहले माना कर, कोई भी तो सासुरी अपने बहुओं को मना नहीं कर रही। अरे कृष्ण का जाना कब, तो एक मिनट के लिए वो जब चले जाएंगे तो और समाप्त हो जाएगा, तू जो कुछ भक्ति है भक्ति रख, हम तो जा रहे हैं। तू अपने लड़के से तो कहेगी वो मारेगा या रोकेगा तो हम उसके लिए तैयार। इस प्रकार से अति विलंग एकदम विशेष रूप से लंघित उनके वाक्यों को कर करके चल रहे। एवं मदत्थोचित लोक वेदा वेद स्वामी, जबकि कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और उसके बाद में लौटे तब ये श्लोक पढ़ा गया। मदद को उद्धित लोक भेद मैं तुम लोगों के भाव को बढ़ाने के लिए मैं गया था, मैं कहीं दूसरी जगह नहीं गया, मैं अलक्षित रूप से तुम लोगों के पास ही रह करके तुम लोगों के लिए देख रहा था कि कैसे कैसे ये भाव हो रहे हैं। मदर्थो उज्जित लोक वेद स्वाणन, लोक वेद हमारे लिए तुम लोग सब कुछ छोड़ दिए, ऐसा कोई आज तक नहीं कर सका। तुम लोगों ने जिस प्रकार से हमारे लिए ये सब किया तो मैं तुम लोगों के प्रति अकृतज्ञ नहीं हूँ। तुम लोग ऐसा मत समझना, हमारे ऊपर में क्रोधित मत होना। हम तो तुम्हारे इस भाव को और बढ़ाने के उद्देश्य से ही मैं छीप गया था और तुम लोग क्या करती इसको देखो, और जगत को यह चीज़ दिखलाने के लिए या हमारे विरह में इनकी कैसी दशा होती है इस चीज़ को जगत को बतलाने के लिए मैं कुछ छीप गया। तुम लोग हमारे प्रिया हो, मैं तुम्हारा प्रिय हूँ, इसलिए तुम हमारे प्रति दोषारोप पर मत करो। कृत्वा तामंतम आत्मानं जागति गोपजोषितः, इसमें बतला है कृष्ण उतने बन गए जितने गोपजोषित थे। यहाँ पर बतला रही है कृत्वा तामंतम आत्मानं, कृष्ण ने अपने को उतने ही संख्या में प्रकाश किया, गोपियां नहीं गोप जोषित ये कहने का उनका तात्पर्य गोपों की पत्नियां थी। गोपों की पत्नियां यदि अपनी पत्नी होती तो कहते जैसे अपनी जितनी पत्नियां थी
उतनी प्रकाश
तो अपनी पत्नियों का नहीं कहा
गोप पत्नी
गोप ये कौन है, कृष्ण से अलग है, इसलिए गोपों को पत्नियां जितनी थी कृष्ण ने उतना बनाया, इसलिए यहाँ पर ये भी पार्टी मन मानस स्वपाशान स्वान स्वांदाराम को भजा। जब राज संपन्न हो गया तो वो घर लौट करके आए तो उस समय में उन लोगों ने उनके प्रति कोई भी दोष प्रकाश नहीं किया, बड़े प्रेम से उनको घर में रखा। क्यों? जोग माया ने उनकी प्रतिमूर्ति बना करके उनके पास में रख दिया था और उसी से वह संतुष्ट थी कि हमारी पत्नियां तो हमको छोड़ करके नहीं गई। इसलिए करें स्व स्व दारान स्वान दारान माने क्या, उन गोपों ने उन स्त्रियों को अपनी स्त्री मानकर उनकी प्रतिमूर्ति को समझा दी यही हमारी पत्नियां जो वहां पर कृष्ण की पत्नी होती तो ये गोप लोग वहाँ पर क्यों देखते अपने पास। इसलिए उस श्लोक के द्वारा भी सिद्ध करें कि स्वान स्वान दारण उन उन गोपों की
अपनी अपनी
अब उन गोपियों को उन्होंने देखा जैसे हमारी पत्नियां तो हमारे साथ में हैं, इसलिए उनको उनके प्रति कलह करने का या दोषारोपण करने का कोई भी अवकाश नहीं प्राप्त। ऐसे श्रीमद्भागवत के प्रत्येक श्लोकों की व्याख्या ऐसे प्रकार से की जा सकती है। वहाँ विलास पंचम ध्यान वाले सुखदेव गोस्वामी स्वयं कृष्ण और गोपियों के मुख निश्चित इन सब ये कृष्ण के द्वारा या गोपियों के द्वारा ये मुख से निकले हुए बात। राजपंचाध्याय माने क्या, गोपियाँ कुछ कह रही और कुछ कृष्ण कह रहे हैं और उसमें बीच बीच में सुखदेव गोस्वामी अपना मंतव्य भी बीच बीच में प्रकाश कर रहे हैं। ये जितने भी वाक्य हैं ये प्रौढ़त्व और उत्पत्ति के भाव से स्पष्टतः प्रतिपादित हो रहे हैं। यदि रासलीला माइक होती यदि वो माइक होती फिर लक्ष्मी में और द्वारका की महिषियों में इन लोगों से गोपियों की श्रेष्ठता किस बात में थी? यदि रासलीला माइक हो जाए और सभी स्वकीय हो जाए तब तो लक्ष्मी जी से या रुक्मिणी सत्यभामा से गोपियों को कोई अधिक महिमा ही नहीं रहेगी। जैसे उन लोगों ने कुछ नहीं छोड़ा, कृष्ण को पा लिया, ऐसे ये लोग भी बिना किसी परिश्रम के यों ही भगवान को पा लिया, कुछ छोड़ा नहीं पड़ा। इस जगत में यदि हम साधकों को भी काम क्रोध लोभ मोह मोह मात्सर्य इत्यादि छोड़ करके साधन भजन करके सर्वस्व छोड़ देना पड़ता, जब तक कोई हीन गंध भी रहेगा इन सब चीज़ों में तब तक भाई कृष्ण नहीं मिलेगा, भक्ति ही नहीं मिलेगी तो कृष्ण क्या मिलेगा। इसलिए ये सब धूल पूछ जाए और वहाँ पर वो रहेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं। इसलिए गोपियों का उत्कर्ष कैसे प्रमाणित होगा, उनसे श्रेष्ठ है, सभी एक ही समान हो जाएंगे। भागवत में कहते हैं नायम श्रीयो अंग ऊ नितांत रथे प्रसाद, भागवत उसी जगह बताए उद्धव जी स्वयं कह रहे हैं लक्ष्मी जी द्वारका की सत्यभामा इत्यादि और कमलगंधा देवता स्त्री, देवता स्त्री उन्होंने
वामन देव
इत्यादि की स्त्री, ये कोई भी उनकी तुलना में नहीं जा सकती। सबसे श्रेष्ठ ये गोपी कृष्ण की जैसा प्रसाद इन लोगों ने पाया ऐसा न तो लक्ष्मी जी न तो महिषियां न तो देवगण की स्त्रियां नहीं पा सकती। रास उत्सव के समय में कहां गोपियां कृष्ण की गले में हाथ डुलाकर हाथ डाल करके झूलेंगी, कृष्ण ही उनके गले में हाथ डाल करके माला की भांति हो गई, कहीं गोपियां अंतर ध्यान न हो जाए हमें छोड़ न दें इस डर से। इसलिए उन सब लोगों से उत्कर्ष इन गोपियों का है, यदि यह नहीं होता तो उत्कर्ष ही गोपियों का कोई नहीं होता। लक्ष्मी से ही गोपियों का ही श्रेष्ठत्व तो सूचित हो रहा है। यदि रासलीला माइक हो जाती तो फिर उत्कर्ष कैसे रह जाता, भागवत का यह श्लोक ही तब तो माइक हो जाता। कोई आज तक कहीं भी किसी भी शास्त्र में दाम्पत्यमयी अर्थात स्त्रियां अपनी खास पत्नियां अपने पति के साथ में रास करती हुई नहीं सुनी कहीं भी। कृष्ण की तो 16,000 महिषियां थी तो कर ही लेते, नहीं किया।
सगिया में रास नहीं होता,
छोटिया में रास नहीं होगा, पति के साथ में रास नहीं होगा। रास कब होगा, जबकि बराबरी का हो, स्वकिया में बराबरी दास और प्रभु का संबंध है, दास और प्रभु में ये बातें नहीं होंगी, दास और प्रभु में, दासी और प्रभु में कभी भी कोई स्त्री नहीं कहेगी ये हमारे चरण की धूली आप सिर पर ले लीजिए, मैं थक गई हूँ आपके कंधे पर बैठा करके मुझे ले चलो, ये सब नहीं कहेंगे। कहेंगे तब यदि हम ऐसा कहेंगे तो हमें नरक हो जाएगा। इसलिए गोपियां ने कहा कि असुल कदा शिका, मैं तुम्हारी कोई कोई पैसा लेकर के दासी नहीं, हमारे बाप ने तुमसे कोई ये दान पान नहीं दिया है, हम वैसे तुम्हारे नहीं है, हम तो तुम्हारे बेमूल्य दासियां हैं, अमूल्य दासियां हैं, और कभी भी दासी नहीं माने। इसलिए कहीं भी स्वकिया में कोई विराश की होने की संभावना नहीं है। और उपपत्ति प्रतिपादक के श्लोक पहले जो दिखलाए गए हैं वे श्रम कृष्ट हैं। श्रम कृष्ट माने क्या? जबरदस्ती थोपे गए हैं, उनमें कोई सत्या का भाव नहीं है। तभी जो पूर्वक किसी चीज को प्रमाणित करने के लिए, जैसे शंकराचार्य जी ने मायावाद को प्रतिपादित करने के लिए श्रम पूर्वक उधर के घाट पर लगाया, समझ आया? मैंने किसी की बात को एक को दूसरे पर, जैसे देह में आत्म अभिमान करना, ये विवर्तवाद। किंतु शंकराचार्य ने जोड़ करके इस उदाहरण को लगा लिया, जीव और ब्रह्म में लगा दिया। ये जो पूर्वक इसको कहते हैं संकु तत्तम तत्तम असी, ये वेद का बात। तस्तम असी साधारण सा इसका, किंतु उन्होंने जोर पूर्वक लगा दिया तत्तम, तुम भी वही हो, जीव ही ब्रह्म है, ऐसा लगा दिया। कहीं भी ऐसा नहीं। उसी तरह से श्रम क्लिष्ट परीक्षा के लिए इन्होंने ऐसा किया। कोई कहता है कि नहीं तुम ही उल्टा कर रहे हो, राष्ट्रपंच अध्याय में कहीं भी उपपत्ति का भाव नहीं है, या दूस मुख को परिश्रम पूर्वक लगाया गया है, तब तो वो सब गड़बड़ हो जाएगा। तब तो जितना श्रीमद् भागवत का ऐसा श्लोक है सब विपरीत हो जाएंगे। कृष्ण ने रासलीला में स्वयं कहा है, न पारे हम निरुपद्य संयुजन स्वसाध कृत्या दुविधा साथी। कृष्ण कहते हैं देखो मैंने सबका ऋण चुका दिया, किसका? पूर्व में और सब लीलाओं में, यहाँ तक कि दस सप्त वात्सल्य सब में हमने ऋण चुकाया, किंतु तुम लोगों का ऋण मैं नहीं चुका सकता। तुम लोगों का हमारा मिलन है एकदम पवित्र मिलन है, तनिक भी कोई काली माँ या उसमें कुछ नहीं है, दोष नहीं है। स्वसाधु कृत्या आपने हमारे लिए स्त्री पुत्र परिवार सब कुछ छोड़ करके, पति इत्यादि को छोड़ करके जो मिली है ये सुख धन निर्मल प्रेम है, मैं इसका प्रतिदान देवताओं की बहुत बड़ी लंबी आयु पाकर के भी मैं ऋण नहीं चुका सकता। तो ऐसा क्यों कहा? अपनी स्त्री तो सब समय सेवा कर सकती, किंतु सबको छोड़ करके और भगवान की सेवा करना है, इसलिए भगवान प्रसन्न हो जाते, उसका ऋण नहीं चुका पाते। इस पद्यांश का परम प्रेम उत्कर्ष प्रमापकत्व अमूलक और अवंतर हो जाएगा। यदि हम इसको पार्थिया का भाव नहीं मानेंगे तो इसे ये बेकार का हो गया। तब तो गोपियों ने क्या छोड़ा? माँ भजन दुर्जर गृह श्रृंखला, माँ भजन हमारा भजन करने के लिए दुर्जर गृह श्रृंखलाओं को भी तोड़ दिया। गृह श्रृंखला मैंने क्या? सवेरे से शाम तक की गृह की जो श्रृंखलाएं पति की सेवा के लिए होती है वो सब श्रृंखला को तोड़ दिया और कृष्ण से जाकर के लिए, इसलिए कृष्ण के लिए। इसलिए कृष्ण उनका प्रतिदान करने में अशक्त हैं, इसलिए गोपी परम के तन भी वशीभूत हो जाते हैं। तथा यह नित्य सतत पथ है। माइक यदि रासलीला माइक हो जाएगी तो उनका छोड़ना भी माइक हो जाएगा, तब गोपियों का कोई उत्कर्ष नहीं रह सकता। यदि कृष्ण को मायावी बना लो, जो कृष्ण ने माया के द्वारा ऐसा किया, और उनको ठगने के लिए ऐसा कहा, यदि ये मांग लो तो तुम मनोरंजन केवल हो गया। तो क्या मनोरंजन करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे काम सब कर दिया? किंतु मनोरंजन के लिए तो कह देंगे, किंतु महाविज्ञ साधु वर्गों के परम मुकुट मुनि उद्धव जी इस अमंतर अवास्तव और अनित्य माइक विषय में भजन की पराकाष्ठा क्यों स्थापित करेंगे, क्यों करेंगे? मैंने उद्धव जी ने इसी को सबसे श्रेष्ठ भजन स्थापित किया है। तो उद्धव जी तो माइक नहीं है, गोपियों को अनंत कृष्ण को भुलवाने के लिए ऐसा कर दिया, किंतु उद्धव जी महाविज्ञ हैं, माया से मुक्त हैं, वो लोगों को उपदेश क्यों दे ऐसा देंगे? जो गोपियों की चरण कमलों की एक भूरी कणा की मैं वंदना करता हूँ, ये ऐसा कहीं कहेंगे? आशाम हो चरण शाम हम श्याम वृंदावन किम स्त्रियां कभी भी किसी भी स्थिति में अपने पतियों का प्रत्याग नहीं करती, इसको कहते हैं आर्य पथ, यही मर्यादा मार्ग। किंतु गोपियों ने क्षण मात्र में चुटकी बजाते ही ये सब चीजों को छोड़ दिया, लज्जा इत्यादि सब कुछ छोड़ दिया। जो लज्जा छूट नहीं सकती, प्राण चला जाएगा तो चला जाएगा, किंतु उस लज्जा को भी क्षण मात्र में प्रत्याग कर दिया। इसलिए उन गोपियों की चरण धूलि को लेने के लिए गुल्म लता औषधि किसी रूप में हमारा प्रयत्न जन्म हो जाए, और किसी प्रकार से भी मैंने अभिशाप के समय में या कभी भी गोपी की चरण धूलि हमारे सिर पर लग जाए तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। ये गोपियों के प्रेम उत्कर्ष की बात यहाँ पर कही गई है, और आज पचीपा में ये औपपत्य भाव हुआ। इस अतुलनीय प्रेमोत्कर्ष का कारण गोपियों का स्वजन और आर्य पथों का प्रत्याग करके भी कृष्ण के एकांत अनुरागी का होना है। आर्य पथ और स्वजनों का छोड़ना, ये दोनों ही एकांत रूप में कृष्ण के प्रति अनुराग के कारण ही ऐसा हुआ है। यदि स्वजन और आर्य पथ का त्याग भी माइक व्यापार हो तो प्रेम का उत्कर्ष रहेगा कहाँ? जब यही सब माइक हो गया तो यदि ऐसी बात है तो उद्धव का भी बात भ्रमपूर्ण हो जाएगी, उनका श्लोक भी कपट हो जाएगा। दूसरी बात, दशाक्षर और अष्टदशाक्षर मंत्र का अर्थ प्रौढ़ात्व को उत्पत्ति का भाव भी है। जैसे कोई व्यक्ति, कोई लड़की, कोई महिला या पुरुष भी गोपीजन उनके लिए आत्मसमर्पण करता है, कोई कन्या है विवाह नहीं, विवाह होने का पहले ही पति मान लिया कृष्ण को, तो ये गड़बड़ हो गया। यदि वह सारी विचार कर गोपाल मंत्र तो यही, गोपाल मंत्र में गोपियों के प्राण बल लगी हमारे प्राण ये भावना, और अष्टदशाक्षर का भी यही तात्पर्य है। ये सब मंत्रों का वही एक ही तात्पर्य है, अतः कहा जी गोस्वामी के भी जितने शिष्य हैं मैंने उनके मानने वाले वो लोग भी तो यही करते हैं, अतः सभी लोग यही मंत्र करते हैं। नहीं जानते हैं उसका तात्पर्य वो अलग है, किंतु है उसका तात्पर्य यही। कोई जाने चाहे न जाने किसी को सांप काट दिया और वो बेहोश हो गया, तो सांप का मंत्र से कोई झाड़ रहा है तो मंत्र उस पर काम करेगा कि नहीं? सांप का मंत्र से कोई झाड़ रहा है और वो आदमी बेहोश हो गया है बीच के मारे, तो उस पर काम करेगा कि नहीं? शब्द की शक्ति ही तो मंत्र है, तो वो तो काम करेगा ही। फिर वो ठीक हो जाए। सांप काट दिया आदमी, मुख से फेन निकल गया, निकलने लग गया और शरीर सब काला पड़ गया, किंतु अभी थोड़ा सा भी सांस है। कोई मंत्र झाड़ने वाला आया और झट कोई बांस लिया या इसी से ही शब्द जोर से किया और मंत्र पाठ किया, ऊपर से झाड़ने बीस एकदम नीचे आने सब बीस को वो सो। कोई कोई है कौड़ी लगा देते हैं, कौड़ी और पढ़ करके कौड़ी फेंक दिया और सांप को दोनों तरफ से पकड़ करके उस कौड़ी ऐसा भी देखा जाए। यदि मंत्र बोलने वाला आदमी कमजोर हुआ तो वो सांप उन्हीं को काट देगा, वहीं पर मर जाते हैं, और यदि वो बलवान मंत्र शक्ति वाला हुआ तो उसी के द्वारा उसका बीस भी टूट जाए। आजकल मंत्रों के प्रति शंका होने लगी, क्यों? ऐसे ऐसे मंत्र भी जो ब्रह्मचारी होते थे, तपस्वी होते थे, दूसरों का बिना पैसे उपकार करते थे, सब अर्थमय चीज हो गए। अब ऐसा निस्वार्थ आदमी है नहीं, निस्वार्थ रूप में मंत्रों का उच्चारण करने वाले और ऐसे करने वाले नहीं। हमारे गांव में एक थे बूढ़े ब्रह्मचारी, एकदम ऐसे मोटे लंबे चौड़े ब्राह्मण, कपड़े उपड़े कुछ नहीं पहनते थे, खाली वहाँ तपस्वी, और कोई भी आज तक मरा नहीं उनके यहाँ जो पहुँच गया, बस आए और उसको उछाड़ दिया, मंत्र पढ़ा और एकदम हमारी मैया को भी काट दिया तो वो मर गई, तो उनके पास में लोग ले गए, उन्होंने झाड़ दिया तो वो ठीक हो गए। रात भर सोने नहीं दिया, घी खिलाया और पानी ढालते रहे, सवेरा जब हुआ फिर सोने मत लो, क्यों नहीं तो फिर भी चढ़ जाएगा, उसकी प्रतिक्रियाएँ हैं। अभी भी ऐसे ऐसे मंत्र वाले हैं किंतु बहुत कम अब रहे, इसलिए आजकल वो सब विश्वास लोग नहीं करते। हमने सुना है टेलीफोन में कोई कह दिया इसको सांप काट दिया, बस टेलीफोन को मार दिया, वहीं से मंत्र पढ़ करके दूसरा ठीक हो गया, ऐसे भी लोग। ये मंत्र जो है दशाक्षर मंत्र, अष्टाक्षर, कोई विश्वास करे और ना करे तो भी अपना काम करेगा कि नहीं, ये करेगा, ये सिद्ध मंत्र। हम लोग जब पहले अवस्थिति में आए थे, जिस समय दीक्षा हुई उस समय मंत्र का प्रभाव कुछ और था, धीरे 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 और श्रद्धा पढ़ने लगी और करने लगे तो इसका मंत्र का भाव हम इसका स्पष्ट ही देख रहे हैं, जरूर भाव होगा। यदि किसी सूति ने 50,000 वर्ष की या जन्म दी इस मंत्र का जब किया तब वो जाकर के कृष्ण लीला में वो प्रवेश, तो हम लोग का एक दो वर्ष एक दो जन्म भी नहीं लगेगा, ऐसे ही हो जाएगा धीरे धीरे, जन्म जन्मांतरों के ये सब कटेंगे। कृष्ण में पूर्ण रूप में विश्वास होगा, उनका इसी शरीर से साधन अवस्था में नारद जी जैसा झलक दर्शन होगा, इसके बाद फिर दूसरे तीसरे चौथे जन्म में धीरे धीरे ये सब पड़ेगा, उसका प्रभाव अभी नहीं देखा जाता। एक आदमी को सांप ने काट लिया, उसने मंत्र पढ़ा, तो हम देखते हैं कि वो मंत्र शक्ति जाकर के कैसे बीज को उतार रही है, कैसे क्या कर रही है, कुछ अनुभव होता। हम तो देखते हैं जब आँख खोल दिया, अरे ये ठीक, किंतु कैसे कैसे वो क्रिया कर रही है ये तो हम देखते हैं। इसी प्रकार से हम जो मंत्र जप कर रहे हैं, गोपाल मंत्र है, गुरु मंत्र है, और इसका क्रिया हो रही है, जो श्रद्धापूर्वक कर रहे हैं, तन्मयता उसमें यदि कर रहे हैं, जैसे मंत्र छाड़ने वाला तन्मय होकर के मंत्र में तब वो पढ़ता है, हम लोग जो मंत्र करते हैं वो तन्मय होते हैं कि नहीं ये तुम लोग देखो, उसमें कोई दूसरी बात तो नहीं आती, नींद तो नहीं आती, कोई दूसरी बातें उसमें उस समय याद आती है कि नहीं आती, घर में उस समय झाड़ू तो नहीं दे रहा है। जिसकी जितनी उस मंत्र में तन्मयता होगी उसका फल अवश्य सम्मेव होगा ही, तन्मय नहीं होगा उसका नहीं होगा, ये तो सीधी सी बात है। भजन माने क्या? तन्मयता, आवेश। आवेश नहीं होगा ना, ये श्रवण में भी आवेश चाहिए, हम सुन रहे हैं, जो नहीं ठीक से सुन रहे हैं ना वो कोई कोई सो रहे हैं, कोई कोई सुन रहे हैं, कान जा रहा है, कान में वो सब इधर से निकल रहा है, किसी किसी का इधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बस सुन रहे हैं। जब तक सुन रहे हैं क्या सुना नहीं सुना ये कुछ भी पता है, कोई सुन रहा है गंभीर चित्त देकर उसका स्थूल अर्थ समझ, कोई लोग हैं इसके आंतरिक अर्थ को समझ करके उसको ग्रहण करने की चेष्टा, कोई लोग आवेश से सुन रहे हैं। ये सबका अलग अलग तो फल होगा, एक ही समान तो फल होगा। इसलिए जो ऐसे साधन भजन करेगा जिसका कोई दूसरा काम ही नहीं है, दूसरा उसका कोई व्यवसाय नहीं है, कोई दूसरा चिंतन नहीं है, बस एक ही चिंतन है वो मंत्र, तब तो उसका कार्य अधिक होगा। और हम फोकट में कर लेना चाहते हैं तो ये कैसे संभव है, इसलिए कहते हैं ये दोनों का ही तात्पर्य है, दशाक्षर और अष्टाक्षर का औपपत्तमय है, गोपी जन बल्लभ, हमारे तुम्हार गोपियों के जो पति हैं वो हमारे पति, ये पति मैंने वहां पर बल्लभ। इसलिए यदि हम लोग आवेश के साथ में मंत्र करेंगे तो उसका जरूर फल होगा, और जिस तरह से हम अभी हम लोग कर रहे हैं ऐसे में तो करोड़ों जन्मों में भी होना बड़ा कठिन है, कुछ कुछ होगा। ब्रह्मा जी ने यह मंत्र किया हजारों वर्ष तो उसको उनको क्या हुआ, बस सृष्टि करने की शक्ति उनमें आई, क्योंकि यही सोच करके वो कर रहे थे, उनको सृष्टि शक्ति आई। दूसरा कोई अपने कार्य सिद्धि के लिए करेगा तो वो कार्य सिद्धि हो जाएगी, जो मंत्र उच्चारण करते हुए ये मनमानी चिंता आज हमको राबड़ी और फल मिल जाए उसको राबड़ी और फल मिल जाएगा, कोई कोई जो चाहेगा ना, कोई चाहे कहे ये हमको सुंदर पति मिल जाए मिल जाएगा, पार्थिव चीज चाहेगा तो अपार्थिव चीज जब चाहेगा उस मंत्र के जरिए सब कुछ उसके द्वारा, जब कृष्ण प्रेम चाहेगा विलंब क्योंकि दुर्लभ चीज। इसलिए यदि वो पति का भाव से सीता था तो उसको भी काट करके अलग कर देना पड़ेगा, यदि पति का ही भाव है तो गोपीजन बल्लभ इत्यादि जो मंत्र हैं वो तो फिर अशास्त्रीय हो जाएंगे, माइक हो जाएगा, किंतु नहीं, ये नित्य सिद्ध मंत्र हैं, इनके भाव भी नित्य हैं। कृष्ण के जितने भी ध्यान हैं एवं मंत्र में उक्त भाव ही प्रकटित हुआ, बरहा पीड़ाभिरामम मृगमत तिलकम कुंडलाक्रंत गंडम कंजाक्षम कंपुकंठम शिख सुभगमुखम स्वाधरे नस्तवेणुम श्यामं शांतं त्रिभंगं रविकर वशनं पूषितं वैजयन्त्या वंदे विपुलावनस्थं ज्योति शतदुतं ब्रह्म गोपाल वैद्या ज्योति सुतम। कृष्ण की पत्नियां नहीं कहा इसलिए ध्यान में भी बनी। फिर कस्तूर तिलकम ललाट पटले वस्तक्षले कौस्तुभम नासाग्रे वरमक्तुकम कर्तले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपी स्त्री
परिवेष्टित।
अपनी स्त्री कृष्ण की स्त्री नहीं, गोपी स्त्री परिवेश गोपों के स्त्री के द्वारा ये भी इनका ध्यान। कुलेंदी वरकांत बिंदु वदनम वरहावतन संप्रियम शिव शांत उदार पर भी बने। जितने भी कृष्ण के मंत्र हैं सब मंत्रों में यही, श्रीमद्भागवत के भी श्लोक हैं जो कृष्ण का ध्यान है, ब्रह्मा जी ने और यज्ञ पत्नियों ने या गोपियों ने जो मंत्र बतलाया कृष्ण के ध्यान का वो सबका वही। नमोध्यते अब्रवपुषे तड़िदंबराय गुंजावतंस परछुत्कुचिसंभाय वन्नश्यदे भगवद्वेत्रशान्वेणु लक्ष्मणश्रिये विदुपदे
पुष्पांगजाय।
इसमें उन्होंने नहीं किया
जयते जननिवास देव के जन्मवाद। उस श्लोक में ब्रजपुर वणितानां
काम किया, उसमें भी वही श्यामंग हिरण्य परिधि निष्ठ है ना, श्यामंग हिरण्य परिधि धातु प्रभाव
श्यामो सुंदर शिखंड शेखर स्मेर राधिका ऋषि।
अच्छा, तो साधक गण जितने प्रकार का कृष्ण का ध्यान करते हैं उनमें यही भाव है, बस पर आता है। कोई साधक पुरुष हो तो कृष्ण का ध्यान किस रूप में करेगा? यदि कृष्ण का पुरुष होकर के भी उस रूप में ध्यान करता है, अपने को गोपी मानता है, तो तभी तो ये प्रक्रिया होगी, इसलिए ये भी गर्व का हो जाएगा। पता तो ये सब साधक साधन भी नहीं होगा कृष्ण भक्ति का। साधक लोग साधन कर रहे हैं, अप्रकट लीला में यदि रास लीला नहीं है और पार्थिव भाव नहीं है, मान लिया कि ये प्रकट लीला नहीं है, तो कोई साधक जो है वो प्रकट लीला का ध्यान करता है ना वहाँ वाली का ध्यान करता है? वहाँ वाली का तो कहीं वर्णन नहीं, वर्णन तो है यहाँ का भागवत इत्यादि में, इसलिए इसी का ध्यान करता है।